Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. I am Gaurav Dhaman Lal, and with me is my co-anchor in Hindi, Sparsh Saxena.
धन्यवाद. नमस्कार. घड़ी का इशारा हो गया शाम 6:30 का और हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं. जैसा कि आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर्स पर कॉल करने से पहले एससीडी कोड 011 यानी 011 लगाना ना भूलें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवन लाल.
थैंक यू स्पर्श एंड आकार, वेलकम टू द प्रोग्राम.
थैंक यू.
A quick look at the headlines. Indian markets to focus on RBI monetary policy meet and corporate earnings for queues for next week. Foreign investors pump in over 57,000 crore rupees into the Indian equity markets in September. And Finance Minister Nirmala Sitharaman appreciates the World Bank's consideration of 27 out of the 30 recommendations on strengthening multilateral development banks.
अगले सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक और कॉरपोरेट आय करेंगे भारतीय बाजारों का रुख तय. सितंबर महीने तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में किया लगभग 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बहुपक्षीय विकास बैंकों की मजबूती के लिए 30 में से 27 सिफारिशों पर विचार के लिए विश्व बैंक को की सराहना की.
The Indian markets will focus on the events like the RBI monetary policy meeting, corporate earnings, geopolitical tensions and US inflation to take cues for next week. The counting of votes on October 8th for both the Haryana and Jammu and Kashmir assembly elections will also be watched. The Indian markets were rattled by tensions in the Middle East, dragging the benchmark indices down nearly 4.5% for the week. The market was also worried due to the jump in oil prices after a rise in Middle East tensions. The Sensex plunged 3,883 points to 81,688 and the Nifty declined 1,164 points to 25,015. After the higher than expected cut in interest rates, as well as a hint about more rate cuts going ahead by the US Federal Reserve, all eyes will now be on the conclusion of the three-day Monetary Policy Committee meeting of the Indian Central Bank on October 9th. The next key event to focus on would be the September quarter earnings season starting next week with TCS, Avenue Supermarts and Areda. We welcome our first caller for today, Vikas from Kolkata. Vikas, please ask your question.
Namaskar. SBI फोकस इक्विटी फंड अगले 10 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कैसा फंड रहेगा? और SBI मल्टी कैप फंड 10 साल के लिए. नमस्ते.
हाँ जी,
देखिए दोनों ही फंड्स आपके SBI फोकस्ड इक्विटी और SBI मल्टी कैप फंड दोनों ही एक अच्छे फंड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो कि आपने कहा 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. दोनों ही फंड बढ़िया है. SBI एक जो ये AMC है ये भी अच्छी AMC है, आप इसमें बेशक कंटिन्यू कर सकते हैं. बट मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपना जो भी है सारा पैसा केवल अगर इन्हीं दो फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जरूरत है कि आप डाइवर्सिफाई कर लीजिए उसको। एक फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अगर आप और किसी एमसी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सारा का सारा पैसा यहीं पे कर रहे, तो आपका एसबीआई जो फंड हाउस है उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे पूरी तरीके से निर्भर है आपका पैसा। तो अगर कभी कहीं मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल थोड़ा सा आउट ऑफ फेवर चले जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो वहीं अगर एक दूसरे किसी फंड हाउस का जो है किसी दूसरे तरीके का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उनका फंड आपके पोर्टफोलियो में होएगा, तो एक थोड़ा सा सही रहेगा, एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से सही रहेगा
जी। और हमारे साथ अगले कॉलर फरीदाबाद से प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछे अपना।
नमस्कार सर
जी। नमस्कार
सर, मुझे ये पूछना है कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है? शेयर मार्केट ज्यादा रिस्की होता है, नए कस्टमर को कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि नए कस्टमर को जानकारी बिल्कुल नहीं होती। आपके प्रोग्राम को सुनते हैं तो थोड़ा सा पता चलता है कि इसके लिए हम क्या करें, शेयर मार्केट के लिए क्या करें, इसके लिए कोई एजेंट होते हैं या कहीं हमें बैंक होते हैं इसके लिए कोई जानकारी देने वाले, या वहां जाके हम उसको उनसे दे ले सकें।
प्रेम जी देखिए, जब हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट बेसिकली एक जनरल टर्म है जो कि हम लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी तरह तरह की अलग कंपनीज है उनके स्टॉक्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं, यहाँ पे खरीदे बेचे जाते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स एक पूल्ड व्हीकल होता है जिसमें कि एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर एक इन्वेस्टर के बिहाफ पे उसी शेयर मार्केट में से वो शेयर्स खरीदता बेचता है और एक पोर्टफोलियो मेंटेन करता है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि एक नए इन्वेस्टर के लिए क्या सही रहेगा, तो देखिए मेरी सलाह यह रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड्स के साथ जाइए। उसका कारण यह है कि जब भी आप शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि एक आपका अलग तरीके का टेम्परमेंट होना चाहिए, एक स्किल्स होनी चाहिए, उसके लिए आपको अलग टाइम निकालना पड़ेगा इस जांच पड़ताल करने के लिए कि कौन सी कंपनी का शेयर सही रहेगा आपके लिए खरीदना, और कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। तो आमतौर पर इतना टाइम और इतने स्किल्स एक आम रिटेल इन्वेस्टर के पास थोड़ा मुश्किल होते, तो वहीं पर म्यूचुअल फंड्स के लिए बेटर रहते हैं, क्योंकि वहां पर आपको केवल अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, और जो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में एक थोड़ा सा पोर्शन बस खाली लेते हैं और आपके लिए सारे फैसले लेते हैं कि कब कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है, कब बेचना है। साथ ही में एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है वो ये हो जाता है कि यहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है एक बहुत ही छोटे से अमाउंट से। अगर आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यानी कि हमेशा कहते हैं कि आपने वो कहावत सुनेगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो आपको एक अलग अलग आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स होने चाहिए, केवल दो या तीन या एक दो नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास ज्यादा बड़ी पूंजी होने की आवश्यकता होती है, वरना आसानी से नहीं हो पाता। तो म्यूचुअल फंड्स में लेकिन क्योंकि वो एक पूल्ड व्हीकल होते हैं, ₹500 से भी आप केवल उस डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं।
वेलकमिंग फ्रॉम दिल्ली प्रीतम। प्रीतम वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो प्रीतम।
हेलो।
हाँ प्रीतम, प्लीज अपना सवाल पूछिएगा।
मैडम मैं ये पता करना चाह रहा था कि जैसे इस टाइम पे दुनिया भर के युद्ध वगैरह चल रहे हैं, तो उस बीच में हमारी जो करेंसी है लगातार डाउन हो रही है, तो उसके लिए मतलब हमारे बता दे रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत आगे जा रही है, जीडीपी बहुत आगे जा रही है, लेकिन हमारी करेंसी क्यों डाउन क्यों हो रही है, मैं सिर्फ ये पता करना चाह रहा हूँ
जी।
देखिए प्रीतम जी, इस वक्त जैसे है थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, हो क्या रहा है कि ईरान और इसराइल में वॉर चल रहा है, और वहां पे जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि जो ग्लोबल ऑयल सोर्स है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया या एक किसी भी तरीके की वहां पे टेंशन हुई तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और ऑयल इंडियन इकोनॉमी के और हर जगह बहुत ज्यादा यूज होता है, तो अगर उसी का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर वहां पे आपका जो एक इकोनॉमी है इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा गिरावट आ रही है, लेकिन अगर आपका होराइजन 5 साल से ज्यादा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में ऐसी चीजें होती रहती है और छोटे मोटे इसको ऐसे झटके लगते रहते हैं मार्केट में, आप लंबे समय के लिए बने रहिए, आपको फायदा ही होगा।
जी। और जयपुर से हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में,
प्लीज। सब देखिए ऐसा है कि मैं 4-5 साल से सुन ही रहा हूँ मार्केट मंत्र, और मतलब मैं SIP नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। मैं जब मार्केट डाउन होता है तो उसी समय ले लेता हूँ, लगभग हर एक महीना कर लेता हूँ, अब करना चाह रहा हूँ। तो जैसे आदित्य बिरला में मेरे शॉर्ट टर्म डेट फंड है और PSU इक्विटी फंड है, महिंद्रा मनु लाइफ में मल्टी कैप फंड है, और मोतीलाल में क्या नाम मिड कैप इंडेक्स 150 है और डिफेंस का, तो दो कोई बता दे कि जो हम मतलब SIP करें।
देखिए जितेंद्र जी, मैं समझ रहा हूं कि अगर आपको SIP करने के लिए, आप ये जो पूछ रहे हैं आपका होराइजन कम से कम 5 साल का है, आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, तो जो मेरे को लगा कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में डाल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स में अगर मैं बात करूं तो आपका पराग पारिक का अच्छा है, HDFC का अच्छा है, फ्रैंकलिन का भी बढ़िया है। आप इनमें निवेश करिए SIP के जरिए, कम से कम होराइजन 5 साल का रखिए, अच्छे फंड्स है। और वहीं मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि आप बीच में कह रहे थे, आपने जैसे शुरुआत करी कि आप एकदम SIP से नहीं कर पाते, तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत रहती है जिनका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, वो फ्रीलांस करते हैं, अपने काम में होते, तो वहां पे मेरी सलाह ये रहेगी कि जब भी आपके पास एक सरप्लस आता है आप उसको उठा के एक, जैसे कि आपने कहा आप शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी यूज कर रहे हैं, आप एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए। आप एक STP के जरिए बना लीजिए कि एक अमाउंट जितना आप कर सकते हो, और STP के जरिए उसमें इन्वेस्ट करें, बट कभी भी लमसम पैसा मत लगाइएगा।
वी जस्ट लाइक टू शेयर विद आवर लिसनर्स, STP इज अ सिस्टमैटिक ट्रांसफर,
एब्सोल्यूट सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान,
राइट। फ्रॉम दिल्ली वंस अगेन वी हैव नितिन।
नमस्कार मैडम।
नमस्कार नितिन।
हेलो।
हाँ जी नितिन, प्लीज वेलकम।
मैडम हमें ये जानकारी लेनी है, म्यूचुअल फंड में हम जब सुनते हैं आपके द्वारा कार्यक्रम सुनते हैं, हमने कभी इन्वेस्ट तो नहीं किया, म्यूचुअल फंड में बैंक मैनेजर कौन होते हैं, इनका क्या रोल होता है, इनके थ्रू पैसा लगाया जाता है, ये हमें कहाँ मिलेंगे अगर हम पास पैसा लगाएं म्यूचुअल फंड में, तो आप बताते ना म्यूचुअल फंड मैनेजर के थ्रू, अभी आप बता रहे हैं तो अपने को थोड़ा सा पूछना चाह कि कैसे करा जा सकता है, मैं अपने जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं।
नितिन जी देखिए क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये सारी, इनको हम लोग कहते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है इनको हम लोग नॉर्मली कह देते हैं या तो फंड हाउस कह देते हैं या फिर इनका जो नाम होता है AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। इनके ज्यादातर AMCs के जो ऑफिसेज है, जो हेड ऑफिसेज है, वो मुंबई में लोकेटेड है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि उनके यहां पे ब्रांचेज नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले जो आसान तरीका है, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके उनके डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके फंड मैनेजर्स ऑलमोस्ट हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पे कुछ ना कुछ कमेंट्री निकालते हैं। उनकी एक तो फैक्टशीट आती है जो कि बाय लॉ है, जो कि हर महीने के आखिर में पूरा उनका पोर्टफोलियो के डिस्क्लोजर के साथ आता है, और टाइम बर टाइम पीरियोडिकली जैसे अगर कुछ भी लगता है तो वो लोग बीच बीच में अपनी कमेंट्री भी निकालते हैं। तो फंड मैनेजर्स का इस तरीके से मीडिया में बहुत कम्युनिकेशन रहता है। बाकी आप जो भी फाइनेंशियल डेलीज देखेंगे, जैसे मान लीजिए उनमें उनके अलग अलग इंटरव्यूज आते रहते हैं, तो आप वहां पे अपने फंड मैनेजर को ट्रैक कर सकते हैं। आपका फंड मैनेजर कौन है ये आपके फंड की डिटेल्स में वहां पे लिखा होगा, जो भी आपका SID होएगा, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, या फिर कि आपका जो फैक्टशीट है वहां पे ये दिया हुआ होता है। और अगर आपको शुरुआत करने में थोड़ा सा खुद आप बहुत ज्यादा नहीं पहल कर पा रहे, DIY इन्वेस्टर नहीं है, तो अच्छा रहेगा आप किसी भी म्यूचुअल फंड एजेंट की हेल्प ले ले, वो आपको कोई सा भी जो आपका नजदीकी बैंक है वो आपको वहां से भी मदद दे सकते हैं, वो वहां से कनेक्ट कर देंगे, और नहीं तो आप जाके AMFI की वेबसाइट पे अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके आसपास जो भी इसमें आपकी सहायता करते हैं वहां पे एजेंट्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी।
जी बिल्कुल। और दिल्ली से हमारे साथ यशपाल जुड़ चुके हैं। यशपाल जी स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, सवाल पूछे अपना।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्र।
गुड इवनिंग जी।
मैडम मैं ये यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से। अभी रिसेंटली मैं रिटायर हुआ था 3-4 महीने पहले, तो उसमें मैंने अपना जो कॉर्पस था वो अराउंड 1 ईयर, तो आई हैव इन्वेस्टेड इन SBI इक्विटी हाइब्रिड इक्विटी SBI PSU फंड, इसमें है, और प्लस मैंने मतलब डाइवर्सिफिकेशन के लिए SIP भी की है, और एक UPCCL जैसे यूपी पावर कॉर्पोरेशन है उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट किया है, तो अभी एज ऑन डेट तक 3-4 months में अच्छा रिटर्न चल रहा है, तो आई जस्ट वांटेड कि मेरा पोर्टफोलियो इज ओके और शुड आई गो डू सम चेंजेस। SIPs मेरी 6-7 है, उसमें HDFC डिफेंस वाले में थोड़ा रिटर्न कम है, बाकी ऑल आर गोइंग ओके।
आपके इसके अलावा और कोई इनकम सोर्स है या आप इस पे इनकम के लिए डिपेंडेंट है? मैं ये मानता हूं कि आपके पास अगर आपको जैसे इनकम इसमें से डिराइव भी करनी है तो देखिए पोस्ट रिटायरमेंट एक जो बहुत अहम चीज रहती है वो ये रहती है कि आप एक असेट एलोकेशन फॉलो करें जिसमें कि एटलीस्ट 1/3 पोर्शन आपके पोर्टफोलियो का इक्विटी में निवेश करा हुआ हो। आपने कहा कि आप SBI इक्विटी हाइब्रिड में आपने निवेश किया तो वहां से आपको इक्विटी का पोर्शन मिल गया होगा, बट मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि वो भी आपके पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन बना रहा है। जो बहुत जरूरी है वो ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का एक तो 1/3 हिस्सा हमेशा इक्विटी में निवेश करके रखें, और एनुअल विड्रॉल जो एक होता है वो आप 5-6% से ज्यादा ना करें, क्योंकि देखिए अगर उससे ज्यादा करेंगे तो होगा क्या कि आपको अभी तो इनकम पूरी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे महंगाई बढ़ेगी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिर वो आपके लिए काफी नहीं रह पाएगी, क्योंकि हमारे को एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम चाहिए। क्योंकि देखिए आपने खुद देखा होगा जैसे कि आज से 30 साल पहले जो दूध था वो बहुत ही सस्ता होता था, आज उसके मुकाबले बहुत महंगा हो गया। उसी हिसाब से देखिए आप अभी अभी जैसे रिटायर हुए तो आगे कम से कम 25-30-35 साल है जो कि हमको निकालने हैं, तो इस दूध की वैल्यू आज से 10 साल बाद और भी महंगी होगी। तो उस महंगाई के साथ बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम लोग दो चीजें करें, एक अपना पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 1/3 एलोकेशन इक्विटी का रखे, और साथ ही में जो भी आपका एनुअल विड्रॉल है वो आप अभी से निश्चय कर ले कि चाहे कुछ हो जाए आप 5-6% ऑफ द पोर्टफोलियो से ज्यादा अपने नहीं निकालेंगे।
वेलकमिंग फ्रॉम थाने अ रेगुलर लिसनर गुरुनाथ। गुरुनाथ जी वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
जी मैम नमस्ते।
नमस्ते
जी, सर को भी नमस्ते।
नमस्कार
मैम, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा इसका SBI के म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इसमें सर ये देखा जा गया है कि वो अच्छा रिटर्न मतलब परफॉर्म तो अच्छा हो रहा है, रिटर्न भी अच्छा इन्वेस्टर को मिला है, तो क्या सर ये मतलब इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए शॉर्ट टर्म के? थैंक यू सर।
SBI की कौन सी स्कीम है? ठीक है, कोई नहीं गुरुनाथ जी। देखिए SBI के कहीं सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, और मैं समझ रहा हूं कि आप उसके इक्विटी के एक डाइवर्सिफाइड फंड में कर रहे होंगे, तो अभी देखिए आप लंबे समय के लिए बने रहिए। सो आमतौर पे एक SBI AMC अच्छी है, उसके इक्विटी फंड्स में बहुत ज्यादा एज सच कोई दिक्कत की संभावना अभी तो नहीं दिख रही है, मतलब अभी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ बहुत गलत चल रहा हो, तो आप उसमें अपना बने रहिए। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप लंबे समय के लिए बने रहिए, ऐसा ना हो कि जैसे बीच में मार्केट अगर थोड़ा सा डिप करता है तो फिर आपको लगे आप घबरा जाए उसको निकाल ले, एक उसमें आपको बस इन्वेस्टेड रहना है।
जी, और शिमला से हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में।
नमस्कार
जी, सवाल पूछिए।
मेरा सवाल ये, जैसे मेरे पास 8-9 लाख है बैंक में। हेलो
जी जी, सवाल पूछिए प्लीज।
अब मेरे पास जैसे 8-9 लाख है, 9 लाख रुपया बैंक में मेरे पास पड़ा है
जी।
हेलो
जी, हाँ जी,
आगे आगे बताइए।
हाँ जी, तो मैं मुझ म्यूचुअल फंड में इसको मैं कैसे चलाऊं, क्योंकि मेरे को मैं मुझे इस स्कीम के बारे में पहली बार कॉल किया, मुझे पहली बार मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, और इसका मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ?
आपको ये पैसा कब चाहिए वापस? राकेश जी देखिए, आपको पैसा कब चाहिए उस पर पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिपेंड करेगी। अभी आपने जैसे कहा कि बैंक में 8-9 लाख रुपए है, देखिए अगर तो आपको ये पैसा मैं कहता हूं कि अगले 6-7 महीने या 1-8 साल में चाहिए तो आप उसको बैंक में पड़े रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बल्कि अगर वहीं पे कुछ ऐसा है कि ये पैसा बस आपके खाली लॉन्ग टर्म के लिए है, कम से कम आपको 5 साल के बाद के लिए चाहिए, तो फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पीरियोडिकली एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, जैसे कि आपने कहा आपने म्यूचुअल फंड के बारे में पहले बहुत ज्यादा कुछ नहीं सुना है, तो आपने कभी पहले इक्विटीज में भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है ये एक शुरुआती निवेशक के लिए, बिगनर के लिए बहुत ही सही रहता है। ये क्या करता है, ये आपका पैसा लगभग 70% आपका इक्विटीज में लगाता है और अंदाजन 25-30% आपका फिक्स्ड इनकम में रखता है। तो उससे होता है क्या है कि अगर बीच में कभी मार्केट में छोटे मोटे झटके आते हैं या बड़ा शार्प डिक्लाइन भी होता है तो ये फंड्स भी गिरेंगे क्योंकि मार्केट लिंक्ड होते हैं, लेकिन एक प्योर इक्विटी फंड से कम गिरते हैं, तो एक शुरुआती निवेशक के लिए सही रहता है। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन सा एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड सही रहेगा, तो वो रहेगा कि ICICI प्रू का एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड सही है, मिराया सेट का भी सही है। बट इसमें मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भले ही आपका पैसा 5 साल 7 साल 10 साल लंबे बाद के समय के लिए हो, एक मुश्त मत लगाइएगा इसको। आप कम से कम 1 से 1.5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में SIP के जरिए इन्वेस्ट करिएगा, और बाकी थोड़ा सा अगर डिपेंड करता है कि पैसा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उस हिसाब से आप इसको बांट के लगाइएगा।
राइट, सो बिफोर वी वेलकम अनिमेश फ्रॉम नोएडा, आप ये भी कह रहे हैं जो हमारे कॉलर शिमला से थे कि जो आपके पास 9 लाख पड़ा है उसको 3-4 किश्तों में बांट लीजिए, एक अच्छा हाइब्रिड फंड, अगर वो लिख लें हाइब्रिड फंड पे जाएं, गूगल पे भी आपको अच्छे नाम मिल जाएंगे अगर आप देख लें, और उसमें से किश्तों में इन्वेस्ट करें अगले 3 या 4 साल में उनका क्वांटम उनको बांध बांध के।
हाँ जी, मैं कहूंगा कि कम से कम लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में, और ऐसा नहीं मंथली SIPs के जरिए जाइए, खाली 3-4 नहीं, मंथली SIPs। उससे होगा क्या कि जो मार्केट पीक का रिस्क होता है वो कैच करने का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे अभी मार्केट्स बहुत ऊपर थी तो ऐसे में मान लीजिए अगर वो एक साथ डाल देते हो, भगवान ना करे 1 महीने के बाद मार्केट्स एकदम क्रैश हो गई, तो उस वक्त बहुत ज्यादा एक नए इन्वेस्टर के लिए लगता है कि जब 9 लाख रुपए एकदम से नीचे गिरते हैं तो एक बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। और ऐसे में आमतौर पे क्या होता है कि नॉर्मली इन्वेस्टर्स उसको पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं।
राइट, मतलब जल्दी ना करें।
बिल्कुल,
ये दोनों चीजें कि कुछ सिप में, कुछ वन टाइम में और बांट के डालें।
बिल्कुल,
थैंक यू। फ्रॉम नोएडा अनिमेश, अनिमेश वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
वेलकम, थैंक यू मैम। सर, आई एम होल्डिंग 2 funds, वन इज HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड इन विच आई हैव जस्ट गॉट एन NFO, and second I have invested in Tata Nifty India Tourism Index Fund. So I have an investment horizon for around 3 to 5 years, so please give your views about all these 2 funds. Thank you.
So Animesh ji, as far as I understand, you have invested in sectoral and thematic kind of funds, so usually these funds are quite volatile and risky. So the reason behind that is they invest in companies of a particular nature, as you said, export opportunities fund. So it has a particular kind of theme. So these kind of funds by mandate are meant to invest in that particular set of companies only, which are dealing with, export opportunities or in the business of export. So I would say ki for a retail investor, diversified equity funds are generally better, because over there the fund manager has the complete flexibility to invest in all types of companies and all sizes of company types of companies. But that said, if you have already invested, you can still maintain your investment. No need to hurry up or just take out your money. Just stay invested for the long term, at least I would say, like being thematic or diversified, being thematic fund for 7 years or so. So just stay invested and never let it become your core portfolio. Let it remain only a small portion of your portfolio, that is around 10-15%.
जी, इससे पहले अपने अगले कॉलर की तरफ बढ़े, उससे पहले हम नजर डाल लेते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सितंबर महीने तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजारों में लगभग 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार FPI ने इक्विटी बाजार में 57,724 करोड़ रुपए का निवेश किया। यह इस वर्ष में किया गया अब तक का सर्वाधिक निवेश है। ऋण बाजारों में 1,299 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जिससे इस महीने में भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 59,023 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह निवेश भारतीय पूंजी बाजारों में लगातार 3 महीने के सकारात्मक निवेश के बाद किया गया। इस साल अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कोलकाता से देवांजन जुड़ चुके हैं। देवांजन जी, स्वागत है आपका मार्केट मंत्र में, प्लीज सवाल पूछे।
जी नमस्ते मार्केट मंत्र।
नमस्कार जी।
एसबीआई लार्ज कैप इक्विटी फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ में पिछले 6 साल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा इन्वेस्ट अमाउंट रहा 6 लाख प्लस और टोटल प्रॉफिट कुल मिला के ये 15 लाख हो गया। तो इसमें एक मेरा गोल ये है, मैं इसे करोड़ों में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए एसआईपी कितने करना चाहिए, कौन सा डेट पे, ये अगर बताएंगे तो मेरा गोल यही है, मैं इसको करोड़ों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू।
इसमें क्या मैं समझा नहीं इनका गोल।
He wants, I think, continue investment in that.
Okay, so
goal, what should be the goal?
Okay, so just continue investing as far, I mean, what exactly is the purpose? I would like to know which, I believe if you just want to, you know, you are investing for your retirement,
mm-hmm.
just continue investing. और आप इसमें लंबे समय के लिए बने रहिए, एंड यहाँ पे आप अपना केवल एसआईपी से इन्वेस्ट करिए, बाकी बढ़िया फंड है, आप इसमें बने रहिए।
राइट, वी हैव मिस्टर दहिया ऑन द लाइन, बट दहिया साहब यू आर अ रेगुलर कॉलर, वेलकम। क्विकली अ हेडलाइन स्टोरी, वी विल जस्ट टेक अ लुक एट दैट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज अप्रिशिएटेड द वर्ल्ड बैंक्स कंसिडरेशन ऑफ 27 आउट ऑफ द 30 रिकमेंडेशंस फ्रॉम द G20 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स MDBs. During her interaction with Professor Nick Stern in New Delhi, she emphasized that climate finance and technology transfer from developed to developing countries are vital for enabling ambitious climate action in the latter. Professor Nick Stern is a member of the Independent Expert Group on Strengthening MDBs. Mr. Dahiya, welcome. Please ask your question. Yes, please.
Ma'am, my question to the expert is, I want to know his opinion. I have selected recently 4 funds. I want to know, are these good based on to their performance or average or below average? One is SBI Nifty Next 50 Index Fund. Then Bank of India FlexiCap Fund. JM FlexiCap Fund. And Invesco Infrastructure Fund.
जी आकार जी,
सो दहिया जी, आई मीन द फंड्स दैट यू हैव मेंशनड अक्वायर अ फ्यू फंड्स आर नॉट वेरी ओल्ड बट स्टिल यू कैन कंटिन्यू विद देम, आई मीन दे आर गुड टू हैव इन योर पोर्टफोलियो, जस्ट इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, दैट इज व्हाट आई कैन से, एंड यू कैन कंटिन्यू विद द फंड्स।
So quickly, just to take on from here, Akar, you know, you're saying basically the principles remain that choose established funds, don't worry about minor market ups and downs, long term is going to be the beneficial thing.
Right, absolutely. So one should not be afraid of the market, downturns, like, we saw in the last week a small downturn. So there was a dip in the market, but, during such phases, one should stay invested.
जी आकार जी, हम भी हमारे कॉलर ने बताया कि उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था इससे पहले जो कॉलर थे, उनको थोड़ा सा संक्षिप्त में अगर आप SWP के बारे में बताएं।
हाँ जी, सो देखिए, मैं कहूंगा जो एक SWP होता है, ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान होता है, ये SIP का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे जो भी आप अमाउंट और तारीख तय करते हैं, वहां पे आपके फंड से उस तारीख पे उतना अमाउंट रिडीम होके आपके बैंक में आता रहता है। बट अगर जैसे कि यहाँ पे वो कह रहे थे कि उनको जैसे प्रॉफिट हुआ है, तो मैं ये उनको कहना चाहूंगा कि वो तभी आप विड्रॉ करिए अगर आपको पैसे अभी चाहिए, वरना मार्केट में बने रहे, अपने कैसेट एलोकेशन फॉलो करें।
तो श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का, और आकार जी, आपका मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एब्सोल्युटली आकार, थैंक यू। एंड लिसनर्स, बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। इंडियन मार्केट्स टू फोकस ऑन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीट, कॉर्पोरेट अर्निंग्स फॉर क्यूज फॉर नेक्स्ट वीक। फॉरेन इन्वेस्टर्स पंप इन ओवर 57,000 करोड़ रुपीज इनटू द इंडियन इक्विटी मार्केट्स इन सितंबर। एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अप्रिशिएट्स द वर्ल्ड बैंक्स कंसिडरेशन ऑफ 27 आउट ऑफ द 30 रिकमेंडेशंस ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज प्रोग्राम। नमस्कार। Market Center.